अध्याय 11 महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक अवस्था। यदि हम बुद्ध के पूर्व के षोडश महाजनपदों का यथेष्ट अध्ययन करें तो यह पता लगता है कि उन सब में एक प्रकार की शासन पद्धति का अभाव था। कहीं तो राजतंत्र था और कहीं जनतंत्र, कहीं कहीं पर न्यून अंशों में दोनों का समन्वय दिखलाई पड़ता था। गणराज्यों में शासन की बागडोर जनता के हाथों में होती थी। इस प्रकार के राज्य राजाओं द्वारा शासित नहीं होते थे। महाजनपदों के वज्जी, मल, सूर्षेन इत्यादि राज्यों को गणतंत्र राज्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। राजतंत्र शासन में वंश क्रमानुगत एक राजा शासक होता था जिसकी आज्ञा का पालन सब जनता करती थी। षोडश महाजनपद महात्मा बुद्ध के आविर्भाव काल के पूर्व विद्यमान थे। उत्तरी भारत तथा दक्षिण के कुछ प्रदेश इन्हीं जनपदों द्वारा शासित होते थे। इनमें से कुछ तो स्वयं नष्ट हो गए, कुछ राज्यों को प्रबल राष्ट्रों ने अपने चंगुल में समेट लिया और कुछ महात्मा बुद्ध के समय में भी सुरक्षित बने रहे। बौद्ध साहित्य में इनके अतिरिक्त अन्य बहुतेरे गढ़ राज्यों का उल्लेख मिलता है। उन गढ़ राज्यों की सूची निम्नलिखित है। पहला कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा रामगाम के कोली, तीसरा पावा के मल्ल, चौथा कुशीनारा के मल्ल, पांचवा मिथिला के विदेह, छठवा पिपलवन के मोरी, सातवा शुशुमार पर्वत के मग्ग, आठवा अलकग के बुली, नौवा केशपुत के कलाम, दसवा वैशाली के लिच्छवी। इनमें से दो प्रमुख राज्यों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। ये हैं कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी। शाक्य गढ़ राज्य। कपिलवस्तु का शाक्य राज्य बौद्ध साहित्य में विशेष महत्व रखता है। महात्मा बुद्ध का जन्म इसी राज्य में हुआ था। शाक्य जाति के क्षत्रिय थे। दीर्घ निकाय के अनुसार जब महात्मा बुद्ध पंचतत्व को प्राप्त हो गए तब इस शाक्य वंश के लोगों ने अपने को भी उसी महात्मा से संबंधित बताया और कहा कि महात्मा बुद्ध के भस्मावशेष के अधिकारी हम हैं क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और महात्मा बुद्ध भी शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। अन्य स्थानों पर इस शाक्य वंश का संबंध इक्ष्वाकु वंश के साथ जोड़ा गया है। महावंश तथा सुमंग विलासिनी के अनुसार जो कथाएं प्रचलित हैं उनमें शाक्यों को उक्काक का वंशज बताया गया है। इस कथन की पुष्टि विष्णु पुराण से भी होती है। महावस्तु के आदित्य बंधु ये ही शाक्य लोग हैं। आदित्य सूर्य का पर्यावाची शब्द है और भारतीय धर्म एवं साहित्य के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शाक्यगढ़ राज्य के शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सामाजिक परिस्थिति। शाक्य लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। इनमें सच्चरिता की प्रधानता थी। इनमें स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। इन लोगों को अपनी मर्यादा का विशेष ध्यान रहता था। धन का महत्व इनके जीवन में उतना प्रभावशाली नहीं होता था जितना सम्मान और मर्यादा का। इनका दैनिक जीवन सुखमय था। विवाह के अवसर पर वरवधु की योग्यता का विशेष महत्व होता था। इस वंश के राजकुमारों को युद्ध संचालन की शिक्षा दी जाती थी। शिल्पकाल या साहित्य का ज्ञान यदि व्यक्तियों को न हो तो कोई बात नहीं थी, परंतु उनके लिए धनुष बाण प्रयोग, अश्वारोहण, खड़ग युद्ध आदि में कुशल होना आवश्यक था। ललित विस्तार तथा महावस्तु में इस प्रकार की कथाओं का उल्लेख है। सिद्धार्थ के विवाह के समय कुमारी गोपा के पिता दंडपाणि की चिंता की सिद्धार्थ युद्ध संचालन की योग्यता में पूर्ण है अथवा नहीं, इस बात को सिद्ध करती है कि युद्ध विद्या का विशेष महत्व समझा जाता था। शाक्यों का विवाह स्वजाति व्यक्तियों में ही होता था। बाहरी राजाओं से संबंध स्थापित करना शाक्य लोग अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझते थे। इसी से शाक्यों ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को अपनी राजकुमारी न देकर उसके साथ अपनी एक दासी का विवाह करवा दिया था। बौद्ध साहित्य में शिल्प विद्यालयों का वर्णन है। दीर्घ निकाय में एक शिल्प विद्यालय का उल्लेख आता है जो शाक्य राज्य में स्थित था। महिलाओं में शिक्षा का प्रचार था। संघ में बहुत सी बौद्ध भिक्षुणियां भी थी। महाप्रजापति गौतमी शाक्य कुल की महिला थी जिसने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया था। शासन व्यवस्था। शाक्यगढ़ राज्य जनतंत्रात्मक पद्धति द्वारा शासित होता था। इस राज्य में शासन की बागडोर जनता के हाथों में होती थी। राज्य सत्ता 80,000 कुलीन परिवारों के हाथ में थी। राजा या मुखिया का निर्वाचन होता था। महात्मा बुद्ध के पिता सुद्धोधन इसी प्रकार के निर्वाचित राजा थे। निर्वाचन के पश्चात वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता था। राज्य संचालन के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था जो परामर्शदात्री परिषद के रूप में कार्य करती थी। कोई कार्य इस परिषद की सम्मति के बिना नहीं होता था। राज्य का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का सेवक माना जाता था। कपिलवस्तु में जिस संस्थागार का वर्णन है वह यही परिषद है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस परिषद के सदस्य केवल कुलीन वंशानुगत धर्मानी हुआ करते थे। ललित विस्तार में इन सदस्यों की संख्या 500 दी गई है। रिज डेविस ने अन्य नगरों के संस्थागारों का वर्णन किया है और कहा है कि संपूर्ण राज्य का शासन कपिलवस्तु के केंद्रीय संस्थागार द्वारा संचालित होता था। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में यह राज्य अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर एक प्रबल राष्ट्र बन गया था, परंतु कुछ दिनों पश्चात प्रसेनजीत के पुत्र विदुढ़ब्ब ने इसकी स्वतंत्र सत्ता का अपहरण कर लिया। आक्रमणकारी विरुद्धक के लिए कपिलवस्तु का द्वार खोला जाए अथवा नहीं, इस प्रश्न पर संस्थागार में बड़ा वाद विवाद हुआ था। लिच्छवी राज्य के शासक छत्री थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ ने लिच्छवी कन्या के साथ विवाह किया था। छत्री होने के आधार पर ही लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के अवशेष मांगे थे। इस गणराज्य के राजाओं का दैनिक जीवन सरल और साधारण था और उनमें जनता की सेवा का अनुराग था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। प्राचीन काल के भारत के महान नगरों में इसकी गणना होती थी। विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है कि इक्ष्वाकु वंश के पुत्र विशाल ने इसे बसाया था। वह राजा तृणबिंदु का पुत्र था, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा विशाल इक्ष्वाकु का पुत्र था। अन्य सूत्रों के अनुसार यह अनुमान किया जाता है कि चूंकि यह नगर विस्तृत और समृद्ध था, अतएव अपनी विशालता के कारण ही इसका नाम वैशाली पड़ा। अतएव चाहे जो इस राज्य का संस्थापक रहा हो, परंतु यह बात सर्वमान्य है कि वैशाली का नगर भारत का एक महान नगर था। जातक ग्रंथों में भी इस नगर की महानता का उल्लेख किया गया है। तिब्बती जनश्रुति के अनुसार यह नगर तीन भागों में विभक्त था। पहला, जिसमें सोने के बुर्ज वाले प्रासादों की प्रधानता थी। दूसरे, जिसमें चांदी के बुर्ज थे। और तीसरे, जिसमें तांबे तथा पीतल के। ये विभाग क्रमशः उच्च, मध्य और निम्न श्रेणी के लोगों के थे। ललित विस्तार में वैशाली का वर्णन अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली नगरी के रूप में किया गया है। यह नगर इस राज्य संघ की राजधानी थी या वज्जिराज्य संघ की भी राजधानी थी। बौद्ध जैन साहित्य में वैशाली का उल्लेख बार बार आता है। आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले का बसार नामक ग्राम, जो गंडक नदी के तट पर स्थित है, प्राचीन समय का वैशाली नगर था। सामाजिक जीवन, लिच्छवी राज के निवासी उच्च कोटि का जीवन यापन करते थे। जीवन का उद्देश्य धन नहीं अपितु मर्यादा रक्षा था। इनमें जाति संगठन, शिक्षा दीक्षा, धार्मिक कृतियों आदि का प्रचलन था। सामाजिक उत्सव एवं संस्कारों में समारोह के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। गटक की तलहटी में बसे इन व्यक्तियों का प्रमुख लक्ष्य सौंदर्य की प्राप्ति था। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होने के साथ ही साथ इनमें वेशभूषा का भी विशेष ध्यान था। महापरिनिर्वाण सूत्र तथा अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध के लिच्छवी राज्य में पहुंचने पर जो अद्भुत पूर्व स्वागत किया गया, उसका वर्णन है। उनके वस्त्र, आभूषण तथा रथ आदि विभिन्न रंगों में रंगे जाते थे। अधिकतर लोगों का जीवन अनुशासनशील था, इनमें सहनशीलता थी। ये लोग युद्ध कला में अदम्य साहसी होते थे। विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ के लोग तक्षशिला एवं अन्य केंद्र स्थानों में जाते थे। विवादी उत्सवों में धन की अपेक्षा कुलीन जाति का विशेष ध्यान रखा जाता था, परंतु इनमें भी अंतर जाति विवाह बुरे समझे जाते थे। विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग श्रेणी भेद को सूचित करता था। धार्मिक कृत्य इनके जीवन का विशेष कार्यक्रम था। इनके तपस्यामय जीवन का उल्लेख महात्मा बुद्ध ने अनेक स्थलों पर किया है। शासन पद्धति, इस राज्य में गणराज्य सरकार कार्य करती थी। जनता के हाथों में ही राज्य की शक्ति निहित थी। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य को राज्य शब्दोपजीवी संघ के नाम से संबोधित किया है। इस राज्य शब्दोपजीवी शब्द का अर्थ ललित विस्तार में वर्णित किया गया है। वहाँ का प्रत्येक मनुष्य अपने को राज्य का राजा समझता है। न कोई किसी से छोटा है और न बड़ा, वरन सब समान है। योग्य व्यक्तियों को ही अधिकार देने के लिए चुनाव किया जाता था। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सम्मेलन होता था। ये प्रतिनिधि राजा कहे जाते थे। इनके अधिवेशन संस्थागार में होते थे। इन राजाओं की संख्या 7,707 थी। उपराजाओं, सेनापतियों की भी संख्या लगभग इतनी ही थी। चुल्क कलिंग जातक तथा अट्टकथा में भी इस कथन की पुष्टि की गई है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि वैशाली में 7,707 मूल कुटुम्ब थे। वैशाली की जनसंख्या लाखों में थी। यह केंद्र स्थान था जहाँ से समस्त प्रांत का शासन होता था। राज्य में एक पद नायक का होता था। इसकी नियुक्ति निर्वाचन द्वारा की जाती थी। संभव है यही राज्य का प्रधान या राष्ट्रपति माना जाता रहा हो। राज्य में शांति और सुव्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता था। राज्य में अपराधों के लिए कठोर नियम लागू किए जाते थे। अभियुक्तों को बहुधा कारावास का दंड दिया जाता था। इनके राज्य में विनिश्चय महामात्र नामक कर्मचारी होता था, वही अपराध की जांच करता था। यदि व्यक्ति अपराधी सिद्ध होता था तो महामात्र उसे व्यवहारिक नामक अन्य पदाधिकारी के सामने प्रस्तुत करता था और व्यवहारिक पुनः अपने से उच्च अधिकार सूत्रधार नामक कर्मचारी के सम्मुख अभियुक्त को प्रस्तुत करता था। इसके बाद भी यदि अभियुक्त अपराधी समझा जाता था तो वह अट्ठकुलक के सामने ले जाया जाता था। इस प्रकार अट्ठकुलक के पश्चात अभियुक्त को क्रमशः सेनापति, उपराजा और राजा के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था। दंड का समावेश प्रवण्यपोत्थक नामक कर्मचारी देता था। दंड पूर्णतया अपराध सिद्ध होने पर ही मिलता था। लिच्छवी राज्य इस प्रकार उत्तरी भारत का एक सुखी, समृद्ध एवं बलशाली राज्य था। लिच्छवी राज्य की स्थिति, उसका वैभव, धन संपत्ति, योग्य समाज आदि समीपवर्ती राज्यों की दृष्टि में सदैव खटकता था। और कुछ समय पश्चात जिस समय मगध के पराक्रमी निप वीरों ने अपनी भुजाओं के बल से अन्य राजाओं को परास्त करना प्रारंभ किया तो उस समय लिच्छवी को भी नतमस्तक होना पड़ा। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। उपयुक्त राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, परंतु राज्य सत्ता समस्त परिवारों के हाथ में न होकर एकमात्र राज्य के प्राचीन मूल कुलीन परिवारों के हाथ में ही थी। इनके प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहते थे। यह राज्य की व्यवस्थापिका सभा होती थी। संस्थागार का अधिवेशन तभी वैध हो सकता था जब उसमें सदस्यों की एक निश्चित संख्या उपस्थित हो। सभा भवन में सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का प्रबंध आसन पन्नापक नामक एक पदाधिकारी करता था। जो विषय विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता था उसी पर प्रत्येक सदस्य को बोलना होता था। अन्य विषय पर बोलने की आज्ञा नहीं मिलती थी। इसे अनग्र विरोध कहते थे। प्रस्ताव पाठ को ज्ञप्ति का अनुसावन कहते थे। कभी कभी प्रस्ताव पाठ कई बार होता था। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते थे वे मौन रहते थे और जो विपक्ष में होते थे वे बोलते थे। विवादग्रस्त प्रश्न पर मत विभाजन होता था। मत विभाजन भिन्न भिन्न रंगों की सलाकाओं के द्वारा होता था। एक रंग की सलाका एक प्रकार के मत को सूचित करती थी। सलाकाओं को एकत्र करने वाला सलाका ग्राहपक कहलाता था। कभी कभी विवादग्रस्त प्रश्न अन्य राज्य संघों की सम्मति से भी हल कर लिया जाता था। अधिवेशन की पूर्ण कार्यवाही लेखबद्ध कर ली जाती थी। यह कार्य लिपिकों के द्वारा होता था। संस्थागार ही राज्य की सबसे बड़ी संस्था थी। इसी के द्वारा राजा, उपराजा, सेनापति एवं अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी। यही सभा राजनीति को भी निश्चित करती थी। संस्थागार के अतिरिक्त राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल भी होता था। इसके सदस्यों की संख्या बहुत कम होती थी। लिच्छवियों के मंत्रिमंडल में 9 और मल्लों के मंत्रिमंडल में केवल 4 सदस्य थे। मोरी, कोली और छोटे गणतंत्रों में संपूर्ण प्रबंध एक केंद्रीय संस्थागार के द्वारा ही होता था, परंतु चाक्यों और लिच्छवियों के गणतंत्र बड़े थे। अतः केंद्रीय संस्थागार के अतिरिक्त उनके प्रांतीय संस्थागार भी होते थे जो प्रांतीय शासन संचालन करते थे। केंद्रीय और प्रांतीय शासनताओं में क्या संबंध था इसका हमें विशेष ज्ञान नहीं है। भारतीय गणतंत्रों के पराभव का एक प्रधान कारण उनका पारस्परिक ईर्ष्यादेश भी था। अनेक संस्थागारों में भारी दलबंदी थी। भिन्न भिन्न दलों के नेता गुटबंदी में पड़कर बहुधा राष्ट्रीय हित भूल जाया करते थे। चाणक्य ने गणतंत्रों के विनाश के लिए उनके बीच फूट उत्पन्न करने की शिक्षा दी है। महात्मा बुद्ध के समय के राजतंत्र। हम महात्मा बुद्ध के समय के गणराज्यों का उल्लेख कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त उस समय उत्तरी भारत में 4 राजतंत्र थे जो अन्य राजाओं को पराजित कर अपने अंतर्गत साम्राज्य स्थापना की चेष्टा कर रहे थे। ये राज्य थे पहला अवंती, दूसरा वत्स, तीसरा कौशल और चौथा मगध। इस प्रकार ईस्वी पूर्व 6 शताब्दी का काल साम्राज्यवाद के उदय का काल है। साम्राज्य स्थापना की दौड़ में अंततो गत्वा मगध राज्य सफल हुआ। अपने अन्य राज्यों को अपने भीतर समाविष्ट कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार मगध का इतिहास संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। अब हम इन्हीं 4 राज्यों का पृथक पृथक वर्णन करेंगे। अवंती। इस राज्य की राजधानी अवंती थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ प्रद्योत नामक राजा राज्य करता था। बौद्ध साहित्य में उसे प्रज्योत कहा गया है। महावग उसे चंड के नाम से संबोधित करता है और भास महासेन के नाम से। अवंती और वत्स दोनों पड़ोसी राज्य थे। दोनों ही साम्राज्यवादी थे। अतः दोनों के बीच वैमनस्य होना स्वाभाविक था। परंतु अंत में वस्त्रराज उदयन ने अवंती नरेश पद्धोत की कन्या वाशवदत्ता का अपहरण कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। इस विवाह संबंध के कारण इन दोनों देशों में मैत्री संबंध स्थापित हो गया। यह कथा महावज्ञ, प्रतिज्ञा योगंधरायण, बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर आदि ग्रंथों में पाई जाती है। प्रद्योत एक महत्वाकांक्षी राजा था, उसमें कोई संदेह नहीं है। पुराणों का उल्लेख है कि उसने अनेक निकटवर्ती राज्य को अपने अधीन कर लिया था। मध्यम निकाय के अनुसार उसके आक्रमण के भय से मगधराज अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। प्रद्योत ने 23 वर्ष तक राज्य किया था। उसके दो पुत्र थे, पालक और गोपाल। यद्यपि गोपाल बड़ा था, तथापि उसने अपनी इच्छा से राज्याधिकार छोड़ दिया और अपने छोटे भाई पालक को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। पर गोपाल के पुत्र आर्यक ने इसका विरोध किया। पालक की सहायता करने के लिए उदयन ने अपना सेनापति रुमणवान भेजा। आर्यक बंदी बना लिया गया, परंतु फिर भी षड्यंत्र चलते रहे। अंत में पालक मारा गया और आर्यक राज्य सिंहासन पर बैठा। आर्यक का नाम सूर्यक भी मिलता है, पुराणों से अजक के नाम से पुकारते हैं। उसने 24 वर्ष तक राज्य किया था। पुराण पालक और आर्यक के बीच एक अन्य राजा विशाखसूप का उल्लेख करते हैं, जिसने 50 वर्ष तक राज्य किया था। परंतु यह असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि पहला कोई भी अन्य साक्ष्य का समर्थन नहीं करता और दूसरा दो राज्यों के बीच गृह युद्ध के काल में एक तीसरे राजा ने 50 वर्ष तक शासन किया हो, यह भी संभव प्रतीत नहीं होता। यह संभव है कि गृह युद्ध के अशांतिपूर्ण काल से लाभ उठाकर अवंती राज्य का कोई प्रदेश स्वतंत्र हो गया हो और वहाँ विशाखसूप नामक किसी व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से राज्य किया हो। आर्यक के पश्चात उसके पुत्र अवंतीवर्धन ने अवंती में 30 वर्ष तक राज्य किया। तथा सरित सागर उसे पालक का पुत्र बताता है। अवंतीवर्धन के पश्चात अवंती के ऊपर मगध ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरा वत्स, इस राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ उदयन राज्य करता था। यह पौरव वंश का नरेश था। भाषी से वैदेही पुत्र कहते हैं। इससे प्रकट होता है कि इसकी माता विदेह की राजकुमारी थी। पीछे उदयन और प्रद्योत के वैमनस्य का उल्लेख किया जा चुका है। परंतु वाशवदत्ता के साथ विवाह हो जाने के पश्चात दोनों की मित्रता हो गई। इस विवाह संबंध के पश्चात उदयन के परम कुशल मंत्री योगंधरायन ने अपने स्वामी का विवाह मगधराज दशक की पुत्री पद्मावती के साथ भी करा दिया। भाष्यकृत स्वप्नवासवदता के अतिरिक्त बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर भी इस विवाह का उल्लेख करते हैं। अंतर केवल इतना है, अंतिम दो ग्रंथों के लेखक भूल से मगधराज का नाम प्रद्योत लिख गए हैं। अवंती और मगध के साथ उदयन ने मैत्री संबंध स्थापित करने के पश्चात काशी के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु भयभीत होकर काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। भास के अनुसार काशी नरेश का नाम आरुणी था। तिब्बती साक्ष्य उसका नाम आरनेमी बताते हैं। तत्पश्चात प्रियदर्शिका और कथा सरित सागर में उदयन की दिग्विजय का वर्णन है। पूर्व में उसने बग और कलिंग को और दक्षिण में चोल राज्य और कोल राज्य तक ही के प्रदेश को जीता। पश्चिमी भारत में उसने मलेच्छों, तुरुष्कों, पारसिकों और हूणों को पराजित किया। परंतु स्पष्ट है कि इस वर्णन में ऐतिहासिकता बहुत कम है। कथा सरित सागर विदेह राज और चेदी राज के ऊपर वत्स का अधिकार बताता है। उदयन बहुपतिक था। हम उसकी दो पत्नियों वाशवदत्ता और पद्मावती का उल्लेख कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त उसने संभवतः अंग नरेश के दृढ़ वर्मा की पुत्री से भी विवाह किया था। उसका उल्लेख त्रिदर्शिका में हुआ है। धर्मपाल टीका से उदयन की चौथी पत्नी मागंदिया का बोध होता है। यही नहीं, रत्नावली के अनुसार उदयन का अपनी पत्नी वाशवदत्ता की कचुकी सागरिका के साथ भी प्रेम था। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उदयन के कुछ विवाहों का महत्व राजनीतिक था। उसने अवंती, मगध और अंग के राजाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उन्हें मित्र बना लिया था। यदि वह ऐसा न करता तो उसका वस्त्रराज संरक्षित न रह पाता। वह उपयुक्त तीनों राज्यों की साम्राज्यवादिता का शिकार बन जाता। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उदयन के पश्चात वत्स का उत्तराधिकारी कौन हुआ। प्राण वही नर का नाम लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ उदयन के पुत्र का नाम बोधि बताते हैं। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी उसका नाम नरवाहन दत्त बताते हैं। जो भी हो, इतना निश्चित है कि उदयन के पश्चात कोई भी राजा ऐसा शक्तिशाली न हुआ जो वस्त्रराज्य को अक्षय रख सकता। पुराण वही नर के पश्चात क्रमशः दंडपाणी, निदामिन और शेमक के शासन का उल्लेख करते हैं। परंतु इनके समय में उत्तरोत्तर वस्त्रराज की अवनति होती गई और अंत में वह मगध राज्य में मिल गया। तीसरा कौशल, महात्मा बुद्ध के समय कौशल में प्रसेनजीत राज्य करता था। बौद्ध साहित्य में इसका नाम प्रसेन नदी मिलता है, कहीं कहीं इसका नाम अग्निदत्त भी मिलता है। यह इक्ष्वाकु वंश का था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। साहित्यिक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि कौशल और काशी के राज्य में बहुत दिनों से शत्रुता चल रही थी। कौशाम्बी जातक, कुणाल जातक और महावग्ग जातक में काशी नरेशों के द्वारा कौशल राज्य पर आक्रमण किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। दिघिति कौशल जातक से प्रकट होता है कि एक बार काशीराज ने कौशल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। प्रारंभ में काशी नरेश अधिक शक्तिशाली था, परंतु कालांतर में कौशल राज ने अपनी शक्ति का संगठन कर काशी से अपने पूर्व पराभवों का बदला लिया। घट जातक का कथन है कि कौशल नरेश बंक ने काशी पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। प्रसेनजीत के पिता महाकौशल के समय भी काशी का कुछ भाग कौशल के अधीन था। महाकौशल ने जब अपनी पुत्री का विवाह बिम्बिसार के साथ किया तो उसे काशी का एक ग्राम दिया था। कौशल राज्य भी साम्राज्यवादी था। बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि शाक्य और मल्लों के गणराज्य उसके अधीन थे। बौद्ध साहित्य में 5 अन्य राज्यों के भी उल्लेख आते हैं जिन्होंने प्रसेनजीत की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु ये राजा किन प्रदेशों के थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। शीघ्र ही कौशल राज्य को मगध राज्य से लोहा लेना पड़ा। बात यह थी कि कौशल नरेश प्रसेनजीत को बहन कौशल देवी का विवाह मगधराज बिम्बिसार के साथ हुआ था। कौशल देवी अपने साथ काशी का एक ग्राम भी लाई थी। कुछ समय के पश्चात अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी और मगध का राज्य स्वयं हस्तगत कर लिया। अपने पिता के शोक में कौशल देवी का भी कुछ समय बाद देहांत हो गया। अजातशत्रु के इस जघन्य कार्य से असंतुष्ट होकर प्रसेनजीत ने काशी के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। बस इसी से कौशल और मगध के बीच युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में कई बार अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु अंत में अजातशत्रु की पराजय हुई और वह बंदी बना लिया गया। अंत में प्रसेनजीत ने परम शक्तिशाली मगध राज्य के साथ संधि कर लेना ही श्रेष्ठ समझा। अतः उसने अपनी कन्या वाजिदा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी ग्राम उसे फिर से दे दिया। प्रसेनजीत को सलाह देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद थी, इसमें 500 सदस्य थे। उसके अनेक मंत्रियों के नाम भी मिलते हैं। मध्यम निकाय एक मंत्री प्रीविद्ध का उल्लेख करता है। उपस्कदशाओ एक अन्य मंत्री मेघधर का नाम लेता है। अन्यत्र बौद्ध साहित्य में प्रधानमंत्री दीर्घचारायण का नाम उल्लेख है। प्रसेनजीत भी बहुपतिक था। बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि एक बार उसने एक मालाकार के मुखिया की पुत्री मल्लिका को देखा। वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। यद्यपि वह वृद्ध हो चुका था, तथापि उसने उस 16 वर्ष की कन्या के साथ विवाह कर लिया। उसके विवाह के संबंध में एक दूसरी घटना का भी उल्लेख मिलता है। वह कपिलवस्तु के साक्यों के साथ विवाह संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु साक्य अपनी कन्या के विवाह उसके साथ न करना चाहते थे। परंतु भय के कारण वे प्रसेनजीत के प्रस्ताव को स्पष्टतया अस्वीकार भी न कर सकते थे। अतः उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने राजकुमारी के बदले एक दासी का विवाह प्रसेनजीत के साथ करवा दिया। इस दासी का नाम वाशव खत्तिया था। इसी से प्रसेनजीत को विरुद्धक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। तिब्बती जनश्रुति के अनुसार विरुद्धक की माता का नाम मल्लिका था, जो साक्यों की दासी थी। यह साक्ष्य प्रसेनजीत की दूसरी रानी का नाम वर्षिका बताता है। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि सब साक्ष्य विरुद्धक को दासी पुत्र कहते हैं। बड़े होने पर विरुद्धक ने मंत्री परिषद के 500 मंत्रियों को प्रलोभन एवं छल छद्म से अपनी ओर मिलाकर प्रसेनजीत को पदच्युत कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। निराशित होकर प्रसेनजीत अपने दामाद अजातशत्रु के राज्य मगध में शरण लेने के लिए चल पड़ा, परंतु मार्ग में अनेकानेक कष्टों के परिणाम स्वरूप राजगृह की सीमा पर पहुंचकर प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई। अब विरुद्धक ने साक्यों से बदला लेने का निश्चय किया। प्रारंभ में उसे सफलता न मिली, अतः उसके प्रधानमंत्री अम्बरीश ने कूटनीति से काम लिया। उसने साक्यों को अपनी वेशहीनता का विश्वास दिलाया, उनसे अपने दुर्ग द्वारों को खुलवा दिया। परंतु द्वारों के खुलते ही विरुद्धक की सेना ने साक्यों पर आक्रमण कर दिया। इस बार उसकी विजय हुई। 7,07,000 साक्य मारे गए और इस प्रकार साक्यों के राज्य की स्वायत्त सत्ता जाती रही। परंतु अपनी इस विजय के पश्चात विरुद्धक अधिक समय तक जीवित न रहा। फिर उसका अंत हो गया। यह अंत किस प्रकार हुआ, इसका हमें निश्चित ज्ञान नहीं है। रत्नावली का उल्लेख है कि वत्स के राजा उदयन ने कौशल राज पर आक्रमण कर उसे मार डाला था। संभव है कि कौशल राज विरुद्धक ही रहा हो। पुराणों में विरुद्धक का नाम शुद्धक मिलता है। उसके पश्चात कूलक सूरत और सुमित्र कौशल के सिंहासन पर बैठे, परंतु ये निर्बल राजा थे। इनका शासन काल संभवतः कौशल राज्य का अवनति काल था। अंत में यह राज्य भी मगध राज्य में मिला लिया गया। चौथा, मगध। महात्मा बुद्ध के समय में मगध राज्य में क्रमशः बिम्बिसार और अजातशत्रु ने राज्य किया था। इनके शासन काल की प्रमुख घटनाओं पर हम मगध राज्य का उत्कर्ष नामक एक स्वतंत्र अध्याय में विचार करेंगे।